हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सबको अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये 2021 सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो और भक्ति वर्धन करने वाला हो और विश्व में शांति हो। और बड़ा अच्छा हमारे हिमांशु जी ने लिखा था, 5वें स्कंद भागवत का श्लोक, विश्व में शांति हो, खल भी प्रसिद्ध हो, मतलब दुष्ट भी शांत हो जाए भगवान की कृपा से। स्वस्ति अस्तु अस्तु विश्वस्य। सो भगवान सबका कल्याण करे। नव वर्ष का शुभारंभ हम भगवान श्री कृष्ण के वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत उसके दूसरे स्कंद में भागवत के प्रमुख प्रवक्ता,
इसमें काली भी डालते हो क्या? डालते हो, तेज होती है।
भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाओं का श्रवण करते हुए कल हमने 19वें श्लोक में
आपने क्या खाना है?
भगवान प्रसन्न हो हमारे ऊपर इस शब्द के साथ भगवान प्रसीदताम, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो। और आज 20वें श्लोक में हम पढ़ेंगे कि भगवान श्रेया पति यज्ञ पति प्रजापति धियान पति लोक पति धरापति। हरे कृष्णा। सो सबके लिए नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ भगवान का ये श्लोक सुखदेव महाराज के मुख से जो निकला है, श्री पति यज्ञ पति प्रजापति धियान पति लोक पति धरापति, पतिर्गतेश्च अंधक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। सुखदेव गोस्वामी अपना स्वामी, पति का अर्थ है रक्षक, अपना रक्षक भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, वो मेरी वाणी से प्रसन्न हो जाएं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। कैसे वो भगवान है? विशेष रूप से पहले गति च अंधक वृष्णि सात्वताम, जो अंधक वंश, वृष्णि वंश और यदुवंश, सात्वतान यदुवंश, उस वंश की जो गति है, इसका मतलब जो उनका आराध्य देव है, इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि वृष्णि वंश भगवान का नाम है। भगवद गीता में अर्जुन कहता है, वार्ष्णेय हे वृष्णि वंशी भगवान श्री कृष्ण। तो हे श्री कृष्ण, यदुवंश वृष्णि वंश अंधक वंश की गति, उनके आराध्य देव, उनके रक्षक पति श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। तो आप कौन है कि आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए? भगवान सताम पति, भगवान आप तो भक्तों के पति है। सताम का मतलब भक्त, मैं भी आपका भक्त हूं, भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो, भक्तों के रक्षक भगवान। और इससे आगे 6 और पति वो ऊपर लिखे हैं, श्रीय पति, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति, सबकी उत्पन्न करने वाला भगवान है तो प्रजापति। धीयान पति, बुद्धि सबको देता है भगवान, धीयान पति, लोकपति जैसे जगन्नाथ, जगत का नाथ, तो लोकनाथ, तो लोकपति, धरापति पृथ्वी के ऊपर अवतार लेने वाले पृथ्वीपति, और पति और गति दोनों अंधकों के और विष्णु के और भक्तों के रक्षक, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के कृपा और प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते हुए यहां कह रहे हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के पूजनीय है, भगवान सतामपति भक्तों के रक्षक को पूजने हैं और रक्षक हैं, और जो अंधक वृष्णि और यदु वंश के राजाओं की गति हैं और उनकी महिमा बढ़ाई है, जो लक्ष्मीपति हैं, यज्ञपति हैं, लोकपति हैं, बुद्धि के पति हैं, धीयान पति हैं, प्रजा के पति हैं। एक बात प्रभुपाद लिखते हैं, जो लोकपति है का मतलब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के जो स्वामी हैं, और जो अर्थ जो धरती के ऊपर अवतार लेते हैं पृथ्वीपति, मेरे ऊपर कृपा करें। चक्रवर्ती पाद ने पति का परिभाषा ली है रक्षक, वो रक्षक हैं, वो भगवान रक्षक हैं, किसके, लक्ष्मी के, श्री के, यज्ञ के, लोक के, बुद्धि के, प्रजा के और धरती के, और ये रक्षक और लक्ष्य भी है अंधक वृष्णि और यदुवंशियों के, और जो भक्तों के स्वामी हैं सतामपति भगवान है, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, पहली बात तो सुखदेव गोस्वामी गत व्यलिक है, इसका मतलब उनके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई गलत धारणा नहीं है, कोई विचार में कोई गलत धारणा नहीं है उनके मन में, हरे कृष्णा, तो निष्कपट है, कोई भी मत मतांतर नहीं है, वो सीधा श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है, उनको कोई गलत धारणा नहीं है, इसलिए वो अपने अनुभव को जो उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में अनुभव किया है, जो अनुभव पूर्ण है और शुद्ध है और पवित्र है भगवान के विषय में, उसका वर्णन करें। अब प्रभुपाद जी श्रीपति लिखने से पहले श्रीपति की परिभाषा कैसे करते हैं, कहते हैं संसार में हरेक व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा करके और उसकी कृपा चाहता है, परंतु वो ये नहीं जानता है कि लक्ष्मी के पति है भगवान। अब सब लोग जानते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, अगर उसको स्थायी रूप से आपको सुख भोगना है तो वो भगवान के साथ ही रह सकती है, अकेली नहीं रह सकती। और प्रभुपाद जी यहां ब्रह्मा संहिता से लिखते हैं, सहस्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, सुरभि गायें गोकुल गोलोक में वो भगवान की सेवा करते हैं। ये लक्ष्मी आती कहां से, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी लक्ष्मियां भगवान की अंतरंग हलादिनी शक्ति का विस्तार है, हलादिनी शक्ति का विस्तार है सब लक्ष्मियां, राधा रानी का विस्तार है सब लक्ष्मियां। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, इसलिए लक्ष्मी को चाहने वाले लक्ष्मीपति को नहीं पहचानते हैं। और प्रभुपाद जी कहीं अन्य स्थानों पे ऐसे कहते थे कि रावण जैसे लोग सीता को भोगना चाहते हैं जो लक्ष्मी रूपा है, और राम को वन में भटकने के लिए छोड़ते हैं, उनकी सोनी लंका भी समाप्त हो जाती, पर जो वो परंतु जो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाते हैं, सीता का समाचार लाकर श्री राम को देते हैं हनुमान की तरह, वो भक्त विश्व के अंदर सदा विख्यात रहते हैं। तो भगवान के श्रीपति हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान ने अपने श्रीपति का दर्शन श्री के उद्गम स्थान राधा रानी उसके कायाव्यू गोपियों के संग में इस धरती के ऊपर अवतार लेते समय ब्रज के अंदर रास लीला करके अनंत गोपियों को, जो राधा रानी का कायाव्यू है, लक्ष्मी तो उनका विस्तार है, उनके साथ आनंद का अनुभव किया। और प्रभुपाद जी लक्ष्मी को थोड़ा सा कहते हैं, लक्ष्मी के बाद संसार में लोग इंद्रिय भोग चाहते हैं, और भगवान ने इतने सारे अपनी शक्तियों के साथ लीला विहार किया, रास लीला का विहार किया, ये कोई सामान्य भोग संसार का नहीं है। संसार का भोग अगर होता तो सुखदेव गोस्वामी जैसा वृक्त चूड़ामणि इसका वर्णन नहीं करता। और फिर श्री प्रभुपाद जी तत्काल कहते हैं, श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर संन्यास के नियम पालन करते थे, वो अपने शिष्य भी स्त्री को दूर से प्रणाम करने की भी अनुमति नहीं देते थे। बात करना तो दूर बात है, जगन्नाथ मंदिर में देवदासियां भजन करती थी, वो भजन भी नहीं सुनते थे। सन्यासी को नारी के गाए हुए भजन को सुनने में भी प्रतिबंध लगा हुआ है उनके नियम के अनुसार, परंतु वही भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति करने के लिए कहते हैं सबसे भक्ति का उत्तम साधन गोपियों का है, और गोपियों में श्रीमती राधा रानी, और वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। राधा कृष्ण एक तनु है, वो दोनों एक हैं, दो नहीं है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक माता भगवान है, एक पिता भगवान है। अब यहां तक श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है श्रीपति का, उसके अंदर लक्ष्मी और राधा रानी दोनों का वर्णन किया है, क्योंकि श्री लक्ष्मी भी है और श्री राधा रानी भी है। राधा रानी को वृंद में श्री जी कहते हैं, और जो मुख्य मंदिर है बरसाना में उसका नाम ही श्री जी मंदिर है। तो श्री जी आदि श्री राधा रानी है, वो श्री किशोरी राधा रानी है, और उसका विस्तार लक्ष्मिया वैकुंठ में है। तो उनको कोई पाना चाहे, ये दो चीजें देखो, एक पृथ्वी है, पृथ्वीपति भी भगवान है, लक्ष्मीपति भी भगवान है। ध्यान में आप अच्छी तरह देख लो, दुनिया के अंदर लोग इन दो चीजों के पति बनना चाहते हैं, और किसी के पति बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन इन दो के पति जरूर बनना चाहते हैं, धन के पति लक्ष्मीपति, और पृथ्वी के पति भूमिपति। और ये दोनों मूर्खता करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं इनको मूर्ख कहते हैं, ये कब इनके पति बन सकते हैं, ये तो दोनों भगवान की पत्नियां हैं। इसलिए हम तो एक बार प्रवचन में कह रहे थे, जहां भी पति शब्द आए तो सिर्फ भगवान है, एक पति को छोड़कर। वो कौन सी पति को छोड़कर? चाय की पति को छोड़कर। ये चाय की पति को छोड़कर बाकी जितने भी पति हैं वो भगवान है। ऐसे पांचवें स्कंद भागवत में लक्ष्मी देवी कहते हैं एक भगवान ही पति है, और कोई हाड़ मांस का संसार का पति पति नहीं हो सकता। तो पति एकमात्र भगवान है और कोई पति नहीं है। एक सन्यासी को किसी ने कहा सभापति बन जाओ, सन्यासी ने कहा महाराज नहीं होऊंगा, क्यों? बोला मैं पति किसी का नहीं बनना चाहता हूं, सभा का भी पति बन के मैं सन्यास के नियमों का उल्लंघन नहीं करने चाहता हूं, क्योंकि पति एक भगवान है। तो पति कोई किसी का नहीं हो सकता है, पति केवल एक भगवान है। इस दुनिया में तो बस एक चाय की पति है, उसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है। वो जो लक्ष्मी पति के पीछे भी आप लोग नहीं है। तो यहां जो ये लबाद अभी पति की बात पूरी करके राधा रानी और लक्ष्मी का वर्णन करके श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में यज्ञ का वर्णन है। तो सारे यज्ञों का भोक्ता भगवान है और फलदाता भी भगवान है। यज्ञ का फल भी भगवान देते हैं और यज्ञ का भोक्ता भी भगवान है। और भगवत गीता में तो ये प्रसिद्ध श्लोक है, सयज्ञः सृष्टा प्रवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविषद्वम इष्टवा कामधुक। भगवान ने, प्रजापति ने सृष्टि करके ब्रह्मा को पैदा किया, देवताओं को पैदा किया, मानव को पैदा किया और यज्ञ को पैदा किया और कहा कि यज्ञ करो और ये यज्ञ आपकी कामधेनु है, आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। ये यज्ञ आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा, तो भगवान यज्ञपति है। ये विशेष बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो अभी तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं हुए हैं, कपट से मुक्त नहीं हुए हैं, गलत धारणाओं से मुक्त नहीं हुए हैं, मिसकंसेप्शन जिनकी समाप्त नहीं हुई है, वो हो सकता है यज्ञ किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए करते हो, परंतु देवता जानते हैं कि यज्ञ चाहे हमारा भी किया जाए लेकिन यज्ञ का पति तो भगवान विष्णु है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब यज्ञ करने बहुत मुश्किल हैं, इनके लिए धन चाहिए, बड़ा विद्वान पंडित चाहिए जो यज्ञ करने में कुशल हो, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको संकीर्तन यज्ञ कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भागवत ने कहा है और नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भागवत की पूर्ण आहुति का श्लोक है। तो संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, ये सब का लोग कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। और इसी संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस यज्ञ से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है, उपासना होती है। ये बहुत सरल है। भगवान ने, गौरंग महाप्रभु ने अपनी कृपा इस महामंत्र में छुपा के रखी है, जो भाग्यशाली इस नव वर्ष में अपना जीवन इस भगवत नाम के साथ जोड़ देता है उसका कल्याण निश्चित है। अब भगवत गीता में भी इस विषय में यही श्लोक जो हमने आपको बताए, वो भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन में समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए तो यज्ञ करो, और ये यज्ञपति भगवान है। तो यज्ञ क्यों करना चाहिए, अब ये प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं, यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ करने से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, हम शरीर और आत्मा को साथ रख सकते हैं, इसका मतलब हमारी आजीविका सुख पूर्वक चल सकती है, और फिर भौतिक यात्रा पूरी करके हम अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर लाकर भगवत धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये यज्ञ हमारे को लाभ देगा और संकीर्तन यज्ञ सरलता से ये लाभ सबको दे सकता है। अब एक श्लोक भगवत गीता का प्रभुपाद ने यहां एक लाइन में लिखा है, 18वें अध्याय का श्लोक, यज्ञ तप्य दान कर्मण त्यजेत। ये तीन काम तो कभी जीव को नहीं छोड़ने चाहिए, किसी भी आदमी को ये तीन काम नहीं छोड़ने चाहिए। यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, दान कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य सदा सर्वदा उदारता के साथ दान करने की वृत्ति बनी रहनी चाहिए। और दान कैसा करना चाहिए, भगवत गीता लेके रख दो, किसी को दे दो, एक दान देना है तो प्रसाद रख लो, कहीं जाते हो कोई मांगता है तो प्रसाद दे दो, पुस्तक दे दो, जिसको जो आवश्यकता है उस प्रकार से दान करना चाहिए। और तपस्या, एकादशी आदि का व्रत, ये वैसे अंग हैं, भक्ति के अंग हैं, ये कभी छोड़ने नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत तपस्या है, भगवान की सेवा में और भक्तों को दिया हुआ दान और हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ, ये भक्ति के अंग हैं, ये कभी छोड़ने नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ने चाहिए। और क्यों ये करने चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञपति की प्रसन्नता के लिए। इसलिए भगवान को यज्ञपति यहां कहा गया है। और कठोपनिषद में भगवान को प्रजापति कहा गया है। और वहां ये श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विद्धाति कामान। एक भगवान है जो अनेक जीवों की कामनाएं अनादि काल से पूरी करता आ रहा है, इसलिए भगवान को भूत भरण कहते हैं। भूत भृत, भूत मतलब प्राणी, भृत मतलब उनका भरण पोषण करने वाला, मतलब सबका पालन पोषण करने वाला भगवान है। अब धियापति की बात आ रही है, भगवान बुद्धि के स्वामी है, वो हमारे बुद्धि के स्वामी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हरेक व्यक्ति को उसके अपने योग्यता कर्मों के अनुसार भगवान बुद्धि देता है। सीधा यहां लिखा क्या है, लिविंग बींग्स आर प्रोपोर्शनेटली एंडोर्ड विथ इंटेलिजेंस स्ट्रम ऑफ देयर प्रीवियस एक्टिविटीज। इसका मतलब अपने कर्मों के अनुसार हर एक व्यक्ति को उसी मात्रा में बुद्धि मिलती है, इसलिए सबकी बुद्धि समान नहीं है, क्योंकि सबकी बुद्धि देने वालों के पीछे, सबके बुद्धि के पीछे उसके देने वाला है। और इसका वर्णन 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में है। हा, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्मृति मतलब याद करने की ताकत, अपोहनम भूलने की ताकत, और ज्ञानम और ज्ञान और स्मृति बुद्धि, ये मैं देता हूं। कोई बहुत बड़ा तेज बुद्धिमान हो सकता है, बड़ा महान बुद्धिमान हो सकता है भगवान की कृपा से, और दूसरे नहीं हो सकते, कम बुद्धि वाले हो सकते। और कोई पूर्ण मूर्ख भी हो सकता है, लेकिन दोनों के पीछे देने वाला भगवान है, इसलिए भगवान को धियामपति कहा गया है। धियामपति भगवान बुद्धि के पति है। इसलिए आप देखें, पहला ही श्लोक हमने पढ़ा था और गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, उसमें धी मही है, हमारी बुद्धि, भगवान हमारी बुद्धि को, हमारे को बुद्धि दें। भगवान से धन नहीं मांगना चाहिए, भगवान से और कुछ नहीं मांगना चाहिए, केवल बुद्धि हमारे पास रहेगी, भगवान हमको बुद्धि देंगे। और विशेष रूप से भगवान अगर बुद्धि योग देंगे, जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं जिसके द्वारा मेरे पास आते हैं, अगर हमारे पास बुद्धि रहेगी तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बुद्धि भगवान देते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र में धीमही है, भागवत के पहले श्लोक में धी, हाँ, सत्यम परम धीमही, हमारी बुद्धि भगवान को ग्रहण करे, ऐसी बुद्धि हम, सती मति होनी चाहिए, ऐसी मति हमारे को भगवान दे। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत में सारे ही जीव संसार का स्वामी बनना चाहते हैं, सारे पति बनने के, पति बनने का परिश्रम कर रहे हैं और अधिक से अधिक बुद्धि लगा के समझते हैं इसका पति मैं बन जाऊंगा। यह है बुद्धि का दुरुपयोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, और इसी के कारण उसको पागल समझना चाहिए। वो बुद्धि का पति कैसे बन सकता है, वो संसार का पति कैसे बन सकता है, लक्ष्मी का पति कैसे बन सकता है, ये दोनों मूर्खता उसको पागल कहने का, वो पागल कहना लेके योग्य है, इसलिए पूर्ण हमारा ज्ञान भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए होना चाहिए, न कि प्रकृति के ऊपर स्वामित्व और प्रभुता करने के लिए होना चाहिए। ये हमारी मूर्खता है, परंतु ये बद्ध जीव की मूर्खता उसको भोग में, इंद्रियों के भोग में लगा देती है और वो जीवन भर पाप कर्म करके अपने आप को बंधन में डाल देता है। इसलिए वो बंधन से मुक्त नहीं होता है और मूर्ख बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है। ये सारा जगत जो है भगवान की सृष्टि है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ईशोपनिषद के एक श्लोक का भाव, ईशा भाषा इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, क्या है किंचित, जो कुछ है जगत भगवान का है, सब कुछ भगवान ने पैदा किया है, हमारे भाग में जितना है उतना हमको लेके उसमें संतुष्ट होना चाहिए, दूसरे की संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। और इसके बाद भगवान, अब श्रील प्रभुपाद जी भगवान धियानपति कह दिया, अब पृथ्वीपति की परिभाषा बता रहे हैं। पृथ्वी का पति है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर जब संकट आता है तो पृथ्वी भगवान को प्रार्थना करती है और भगवान पृथ्वी के ऊपर अवतार लेते हैं अपनी योग माया के द्वारा, अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। और भगवान जब अवतार लेते हैं क्यों लेते हैं, कि सारे जीव जो भगवान के हैं, जो भगवान को भूल गए हैं, उनको फिर एक और मौका देने के लिए, एक और अवसर देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान ये शिक्षा देते हैं, ये आदेश करते हैं कि मेरा शरण ले लो, मूर्खता से भोग के पीछे मत भागो, माया का शरण मत लो, मेरा शरण ले लो, आप नहीं भोग सकते हो। भगवान कहते हैं तुम भोगता नहीं हो, मूर्खता मत करो। पांचवें अध्याय भगवद गीता में तो हमने बताया है, भोगता आरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोगता हूं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ने ये भोक्तापन का प्रदर्शन अपने अवतार के समय द्वारका में 16,108 रानियों के साथ विवाह करके सबको महल बना के दिया और सबके साथ रह के दिखाया। और आप मूर्खता से एक दो पत्नियों के पति होके और समझते हो कि हम बड़ा भोग कर रहे हैं, भगवान हंसते हैं कि क्या तुम्हारा भोग है कीट पतंग, तुम्हारा ये भोग नहीं है, ये सब मेरे, मैं सबका पति हूं। प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में भगवान ही पति है। अब देखो हम जीव है शक्ति, भगवान है शक्तिमान, तो हम सबका पति भगवान है। केवल स्त्रियों का पति तो नहीं है, लेकिन सबका पति भगवान है, लोकपति है, हम भी तो लोक में आते हैं। तो यहां तो प्रभुपाद वास्तव में सब स्त्रियों के पति तो एक भगवान है। हम अपने आप को झूठे अहंकार के कारण समझते हैं कि हम किसी के पति हैं, हम किसी के पति नहीं हैं। पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा के लिए हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो पति की परिभाषा है इस श्लोक में, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो पति श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो पति और गति है यदु वंश की, और तो यदुवंश की पति और गति श्री कृष्ण है। इसका मतलब ये सारी प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी जी की, ये जो शरणागति की प्रार्थना है वो श्री कृष्ण को है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनको कहते ही यादव है, यादवेंद्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अब कहते यदुवंश की बात करते हुए प्रभुपाद जी को ये आया कि भगवान यदुवंश को अपने साथ लाए थे, और जब भगवान गए तो यदुवंश का संहार करा के प्रभास क्षेत्र में अपने साथ ले गए। और ये दिखाने को तो भगवान ने नाटक किया, वैसे यदुवंश का कोई नाश नहीं कर सकता है, वो भगवान के पार्षद थे, भगवान के साथ वापस चले गए भगवान के धाम में। भगवान भक्तों का रक्षक है, भक्तों का पालक है, रक्षक है, पोषक है, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। प्रभुपाद जी लिखा है, बड़े प्रेम और स्नेह के साथ सुखदेव गोस्वामी अपने आप को भक्त और भगवान को सातवां सातवतांपति सतांपति भक्त कह के और बड़ी प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम 21वें श्लोक में जा रहे हैं। यदंग्री अभिध्यान समाधि धोत्या धिया नु पश्यन्ति तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतद् कवयो यथा रुचम् समे मुकंदो भगवान प्रसीदता। मुक्तिदाता भगवान मुकंद, वो मुकंद मुक्तिदाता भगवान मुकंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, बड़ी कृपा करें। ये मुकंद भगवान को कौन जानते हैं? यद अंग्री, यद मतलब जिस मुकंद भगवान श्री गोविंद कृष्ण की, अंग्री का मतलब चरण कमल, भगवान के चरण कमल अंग्री अभी ध्यान, अभी का मतलब होता है रोज, रोज नहीं हर समय, हर समय माने नहीं नहीं निरंतर, अभी का मतलब निरंतर और ध्यान का मतलब सुमरण। जो श्री मुकंद माधव के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करता है उससे क्या होता है? समाधि लग जाती है। वो क्या करती है? धौत्या, वो धो देती है। किसको? चित्त को। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन हो जाता है, धुलाई हो जाती है। धोतया, धुलाई हो गई, साफ हो गया, तो फिर क्या होगा उसको? धीयान अनुपश्यति। तो ये समाधि लगाएगा, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा, कौन से रास्ते से? धीयान अनुपश्यति ही तत्त्वम आत्मनः। वो अनुपश्यन्ति, धिया धिया बुद्धि से, धिया का मतलब कौन सी बुद्धि? जो समाधि से धुल के साफ हो गई है। ये कैसी बुद्धि हो गई है? निर्मल बुद्धि हो गई, ये सती मती हो गई, ये शुद्ध बुद्धि हो गई। बोला मिली कैसे? अनुपश्यन्ति, अनुगामी बनने से, आचार्य चरण के, आचार्य चरणों के चिन्हों के ऊपर चल के परंपरागत मर्यादा में रहकर। तो उसको पश्यन्ति ही आत्म तत्वम, तो फिर उसको निश्चित रूप से आत्म पर भगवान का दर्शन होगा, आत्मा और भगवान दोनों का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन सूर्य के समान है, उसके उगते ही अपना भी पता लग जाएगा। तो ये है पहली लाइन में, परंपरागत आचार्य चरण के चरण चिन्हों में चलते हुए भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान और समाधि से अपनी बुद्धि को धोकर जो भगवान का दर्शन और अपनी आत्मा का दर्शन कर लेता है, ऐसे भगवान मुकंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर दूसरे, वदन्ति चैतद, चैतद का मतलब दूसरे, दूसरे कहते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं भगवान के लिए। वो दूसरे कैसे हैं? कवि, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े पंडित हैं। यथा रुचम, जैसे उनको समझ में आता है, जितना उनको भगवान के बारे में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि उनने भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान तो किया नहीं, बुद्धि को शुद्ध तो किया नहीं, परंपरा का तो सहारा लिया नहीं, अपने प्रयास से जो कुछ उन्होंने समझा है। यथारुचम, यथारुचम का मतलब जितना उनको समझ में आया, वो उसका भगवान का ऐसे वर्णन करते हैं। और जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है वो भगवान का मुकंद के रूप में वर्णन करते हैं, ऐसा मुकंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसको जो मुक्ति दाता है, जिनके चरण कमलों का क्षण क्षण में सुमरण करने से, कैसे सुमरण करें, आचार्यों के चरण चिन्हों में चलकर, प्रमाणिक गुरुजनों के चरण चिन्हों में परंपरागत चलकर, जो भक्त समाधि में परम सत का दर्शन करते हैं, और दूसरे कवि बुद्धिमान जो हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, वो जितना उनको समझ में आता है उतना ही वर्णन कर सकते हैं, ऐसा भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, कृपा करें। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मुकंद में कृपा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ध्यान से जिन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों के ध्यान से जिन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध किया है, ऐसे महात्मा भगवत तत्व को जान लेते हैं। परंतु जो दूसरे हैं जिनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, न हुई है, वो जितना उनको समझ में आता है उतना बोलते हैं। आप चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सुखदेव महाराज का इच्छा है, प्रार्थना में भाव है, भगवान श्री कृष्ण मुझे बुद्धि दें। वो बुद्धि के ना, वो ध्यानपति है, मेरे को बुद्धि दे दें, क्योंकि जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, वही भगवान के बारे में जान सकता है, और मुझे भगवान की कथा करनी है तो भगवान मेरे को वो बुद्धि दे जो धुली हुई साफ बुद्धि हो भगवान की कृपा से। परंतु जो दूसरे हैं, दूसरे तो अपने अनुभव के अनुसार जितना समझते हैं उतना ही बोलते हैं। कुछ कहते हैं परमात्मा आत्मा एक है, कुछ कहते हैं ये जगत मिथ्या है, कुछ कहते हैं ये जगत सत्य है, तो ऐसे उनका विचार तो अलग अलग है, परंतु जितने उनकी बुद्धि है उतनी बात करते हैं। परंतु जिनकी बुद्धि भगवान आपके चरण कमलों से शुद्ध हो गई है, चरण कमलों के ध्यान से और गुरुवरों के परंपरा में चलते हुए शुद्ध हो गई है, मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपकी कथा कह सकूं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ध्यान योगी हैं बहुत बड़ा प्रयास करके समाधि लगाते हैं, तो ध्यान धारणा इंद्रियों को संयम करना ये सब करके जब समाधि में बैठते हैं तो परमात्मा का दर्शन होता है उनको। समाधि का मतलब परमात्मा का दर्शन हृदय में करना। परंतु जो भक्त होते हैं सामान्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से अपने हृदय को शुद्ध कर देते हैं, बुद्धि पवित्र हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं तो ये खुली आंखों से समाधि है, भगवान के चरण कमलों से लेकर नख मणि से लेकर और शिख मणि तक मुख मंडल को देखते हुए भगवान का समाधि लग जाती है। तो ऐसे जो प्रतिक्षण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो प्रतिक्षण भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, भगवान के चरण कमलों में कितने सुंदर चिन्ह हैं, इन चिन्हों का जो स्मरण करे, हाँ भगवान के चरण कमलों में बहुत सुंदर चिन्ह है, जव का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, छाते का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, चक्र का चिन्ह है, आकाश का चिन्ह है, धनुष का चिन्ह है, मछली का चिन्ह है, चंद्रमा का चिन्ह है, ऐसे 18 से अधिक चिन्ह भगवान के चरण कमलों में हैं, और हर एक चिन्ह का अपना अपना प्रभाव है हमारे आस्था को शुद्ध करने के लिए। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों को जो क्षण क्षण स्मरण में रखते हैं उसको तो वास्तविक समाधि लग जाती है, और उनका मन और बुद्धि पूर्ण रूप से धुल के साफ हो जाता है, भौतिक कलमश सब समाप्त हो जाता है। ऐसे शुद्ध भक्त समझते हैं, हम तो भव सागर में गिर गए हैं, कैसे भी भव सागर में गिर गए हैं, भगवान हमको इस भव सागर से पार मुका बाहर निकालो। हम भव सागर में गिर गए हैं, भगवान हमको यहां से बाहर निकालो, ये वो कह सकता है जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है। वो कहेगा भगवान हम भव सागर में गिर गए, ये भव सागर है, हम गिर गए हैं, गोता खा रहे हैं। क्या श्लोक याद नहीं आ रहा है, भवाम बुधो, भवाम अबुधो, भवाम बुधो, भव सागर में गिर गया हूं मैं, कृपा कीजिए मुझे भगवान यहां से आप निकाल लीजिए, कृपा दृष्टि वृष्टि दीनो बतानो, हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कीजिए भगवान। मैं तो दुख जालाब दि मग्नम, इस दुख रूपी संसार में भटक रहा हूं, ये उनको अनुभूति हो जाती है। और इस प्रकार से जो भगवान के चरण कमलों का धूलि का अभिलाषी होता है, जैसे चेतन महाप्रभु साक्षात भगवान है, भक्ति के लिए क्या बता रहे हैं, भवाम विस्मय भवाम बुधो तव पाद पंकज धूलि। हाँ, क्या पहला शब्द क्या है, पहला क्या शब्द है, पहला शब्द क्या है, युगा युतम नमिषे न चक्षुषा प्राविष्टम शून्य न,
हाँ
क्या पहला पहला शब्द क्या है श्लोक का,
अये नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्वमे भवाम बुधो तव, फिर कृपया तव पाद, कृपया तव, पता नहीं इस वक्त रोज पढ़ते हैं आज नहीं आ रहा, धूली सदर्शम मया, ये भाव लिखा है प्रभुपाद जी का,
शुद्ध नंद तनुज किंकरम पतितम
पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद तव पाद पंकज धूलि सदर्शम वितज, मैं आपके चरण कमलों की धूली हूँ, किसी कारण से जगत में गिर गया हूँ, भगवान मेरा उद्धार कीजिए, ये प्रभुपाद जी ने भाव लिखा है। शुद्ध भक्त जो है भगवान की कृपा से भौतिक किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होता है, वो केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, तब प्रभुपाद जी को पाद पंकज चरण कमलों का, हाँ। अब श्रीला प्रभुपाद जी को मुकंद माला अस्तोत्र से कुलशेखर जी की ये प्रार्थना याद आ गई, कृष्ण त्वदीय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वै अद्यय अद्यैव मे विशतो मानस राजहंसम प्राण पर्याण समय कफवात पितहि कंठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते। अंत समय जब कंठ में कफ आएगा तब आपका स्मरण कैसे हो पाएगा, हे कृष्ण त्वदीय पाद पंकज आपके चरण कमल, वहां पाद पर वहां भी चरण कमल है, पंद्र यहाँ पर प्रभुपाद ने ऊपर ब्रह्मा संहिता का भाव दिया है, सारे यहाँ चैतन्य शिक्षाश्रम का भाव दिया है, और फिर आपके चरण कमल पंजरांतम मानस हंस राज हंस, मानस राज हंस मेरे मन रूपी हंस आपके चरण कमलों के अंदर ध्यान करने में लग जाए, जब मैं ठीक ठाक हूं अंत समय कैसे कर पाऊंगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत घनिष्ठ संबंध है हंस का और कमल के डंडी का, और ये उदाहरण बड़ा उचित है, जब तक कोई परमहंस नहीं बनेगा
तब तक भगवान के चरणों चरण कमलों का ध्यान कैसे करेगा, उसमें हमेशा के लिए कैसे अपने आप को रमा के रखेगा। भगवान के चरण कमलों में रमण करना, उसी का ध्यान में मगन रहना, इसके लिए परमहंस होना जरूरी है। और ब्रह्म संहिता में जैसे कहा गया है कि कोई बड़ा बुद्धिमान विद्वान कितना भी हो, अपनी विद्वता से भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं ले सकता, उसका स्वप्न में भी ध्यान नहीं कर सकता, वो अनादिकाल तक भले ऐसे विचार करता रहे, क्योंकि भगवान ने अपने चरण कमलों की सेवा देने का अधिकार रिजर्व रखा है, जिसको चाहे उसको दें, सबको दें ऐसा नहीं है, वो केवल शुद्ध भक्तों का ही अधिकार है। और ऐसे जो यत मत तथ पथ, प्रभुपाद जी ने शब्द लिखा है यत मत तथ पथ, ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जैसे हर एक कहता है जैसे जिसका मत है ऐसा उसका रास्ता है, सबके अपने अपने रास्ते हैं। यथारुचम का मतलब यथापथ, इसके ऊपर चलो पहले कथा पढ़ लें प्रभुपाद जी का पूरा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान दुकानदार नहीं है, व्यापारी नहीं है कि वो हर एक ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए बैठा हुआ है। यत मत तत्पथ, ऐसा विचार भगवान नहीं है कि उनके साथ व्यवहार करे जो भगवान को मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। भगवान जैसे हैं वैसे हैं, वो परम सत्य है, सदा अपने अस्तित्व में रहते हैं। वो तो कहते हैं पूर्ण शरणागत जो होता है उसी के साथ मैं व्यवहार करता हूं। और इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है शुद्ध, वो हमेशा पूर्वज आचार्य हैं उनके चरण चिन्हों में चलता है, और गुरुदेव के चरण कमलों का शरण लेकर जो पारदर्शी शीशे के समान है, और उसके द्वारा वो भगवान के चरण कमलों में सेवा करने का अधिकार प्राप्त करता है। वो कभी भी मन कल्पना नहीं करता है, परंतु आचार्य चरणों के चरण चिन्हों में चलता है। महाजनो ये न गत सब पंथ, इसलिए उनके लिए निर्णय तक पहुंचने में कोई कष्ट नहीं। और सारे वैष्णव आचार्य, चारों संप्रदाय के वैष्णव आचार्य इस बात को निश्चित रूप से मानते हैं, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जीव और भगवान दो हैं, अलग अलग हैं, जीव सेवक है, भगवान स्वामी है। और इस तत्व को तो सब संप्रदाय मानती हैं, कोई संप्रदाय जीव को भगवान करके तो मानती ही नहीं है, वैष्णव संप्रदाय में ये सिद्धांत ही नहीं है। और ऐसी जो निम्रता है शुद्ध भक्त की, और जो 100% भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी और भगवान की अनुभूति करेगा। क्यों? उसकी अपनी बुद्धि से करेगा नहीं, भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकट करेंगे, भगवान रिवील करेंगे। भगवान को यज्ञ त्याग से, तप से, दान से, विद्वता से नहीं जाना जा सकता। भगवान जिसके ऊपर कृपा करे वही भगवान को जान सकता है। तब प्रभुपाद लिखते हैं तेषाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते, ऐसे भक्तों को मैं बुद्धि देता हूं जो 100% मेरी सेवा में है, जिनमें निम्रता है। तृणाद अपि सुनिचे न तरोर अपि सही सुनु अमानी नमान देन कीर्तन्य सदा हरि, ऐसे भक्तों के ऊपर मैं कृपा करता हूं। और वो तो जो उनको मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि योग देता हूं, तो वो अपने आप बिना किसी प्रयास के प्रबुद्ध हो जाते हैं और वास्तविक भगवत तत्व को उनकी सारी शक्तियों के साथ अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि भगवान अकेले नहीं है, भगवान अपने शक्तियों के साथ हैं। भगवान, भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की बाहरंग शक्ति, भगवान की तटस्थ शक्ति, भगवान के अवतार, भगवान के भक्त, ये सब अनुभूति हो जाती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई अपनी बड़ी विद्वत्ता से, शास्त्र ज्ञान से भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, परम सत्य का वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसे देखा गया, प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे, हम सुन रहे थे, मैक्स मुलर ने, वो जो जर्मन का विद्वान था, उसने वेदों का अनुवाद किया है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उसको पढ़ के कोई एक भक्त बना है क्या? क्योंकि भगवान का तत्व का वो निरूपण ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध हुई नहीं, आचार्य चरणों के चिन्हों के ऊपर चला नहीं, और भगवान की कृपा प्राप्त हुई नहीं, तो उसके लेखनी से लिखे हुए काले शब्दों से काला कन्हैया प्रकट नहीं हो सकता। और ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का, हमने एक भागवत अंग्रेजी में पढ़ी, तो कोई पीएचडी संस्कृत का, वो अंग्रेजी संस्कृत के तो शब्द समझ में आ रहे थे, उसके अनुवाद का एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहां सुखदेव गोस्वामी भगवान भक्त के मनोभाव से प्रसन्न होते हैं, जनार्दन भाव ग्रही, भक्त का जो निम्रता का भाव है, सरलता और सेवा का भाव है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे ज्ञानी नहीं है, तार्किक ज्ञानी नहीं है, वो कोई अपना मत नहीं देना चाहते हैं, वो यत मत तत पथ वाले ज्ञानी नहीं है, वो तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपा करें। ऐसे ही भगवान के विषय में ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अब दो श्लोक तो प्रार्थना के रहते हैं और एक गुरु वंदना का उनका अपना रहता है, तो एक दिन का हमारा काम और रहता है, कल ये पूरा हो जाएगा कृष्ण कृपा से। और आगे की प्रार्थनाएं कहाँ है, क्या है? प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतिम स्मृतिम हृदय स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशयतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदता। प्रचोदिता, प्रचोदिता मतलब किसी को प्रेरणा देना। किसने प्रेरणा दी? ये ना, जिन्होंने, जिनकी प्रेरणा से पूरा पहले सृष्टि के समय सरस्वती वेद, सरस्वती का एक अर्थ है वेद, वितन्न वता विस्तृत हुआ अजस्य ब्रह्मा जी के द्वारा, सत्यम स्मृतिम हृदय, कैसे सत्यम स्मृतिम हृदय, उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया जिसके द्वारा उनकी स्मृति, उनकी बुद्धि, उनकी यादाश्त पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, सती हो गई, ये भगवान की कृपा से। कौन सा ज्ञान दिया वेद में, क्या है? स्वलक्षणा, स्व मतलब कृष्ण, लक्षणा श्री कृष्ण, जो कृष्ण को लक्षित करता है, प्रादुर्भूत किला आस्यात, फिर आस्या कहते मुख से, फिर वही ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ। समय ऋषिणाम ऋषभ, वो भगवान जो ऋषियों के, ऋषियों में, ऋषियों के ऋषिणाम, ऋषियों के ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब आदि गुरु हैं, गुरुजनों के गुरु, ऋषियों के ऋषि हैं, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती, ब्रह्मा जी को सरस्वती मतलब वेद, तो इसका व्याख्या कल करेंगे। और एक श्लोक, दो श्लोक और हैं बस, पूरा फिर ये पूरा हो जाएगा अध्याय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, वही आया आपका
ये जो बैंड जो बैंडविड्थ काफी लो रहा पूरे टाइम पे, तो आई डोंट नो
क्या क्या लो रहा बैंडविड्थ
आपका, वीडियो तो आया ही नहीं और आवाज भी थोड़ी बीच बीच में।
ओ मेरे ख्याल में 31 से 30, 31 से 1 वाला तारीख का कुछ नेट कल से शाम से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, चल तो रहा है वीडियो, में देख रहा हूँ किसी वक्त जा रहा है किसी वक्त आ रहा है। मुझे लगता है ऐसा कोई है।
प्रभु जी
हाँ जी हाँ जी बोलिए प्रभु जी।
आज आपका बैंडविड्थ नेटवर्क काफी लो रहा आज पूरे टाइम ना, तो इन द होल पूरी क्लास में, और आपका वीडियो तो आया ही नहीं।
कौन सी है ये जो क्लास चल रही है इसमें फेसबुक में या यहाँ?
हाँ नहीं वो कहाँ कभी डिस्टर्ब ही रहा,
कहाँ फेसबुक में के यहाँ
आवाज भी थोड़ी।